हरे कृष्ण अध्याय संख्या 7 और श्लोक संख्या 9 पुण्य वंदे पृथ्वीयां च तेजस्नवीरसावसु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्य वंदा पृथ्वीयां च तेजस्नवीरसावसु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। इसका अनुवाद प्रभुपाद जी लिखते हो, मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। दोबारा से पढ़ता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं पृथ्वी की आद्य सुगंध और अग्नि की ऊष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। अध्याय संख्या 7 का नाम है भगवत ज्ञान। यह भगवान जो है अपने बारे में ज्ञान दे रहे हैं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक पहले ज्ञान की चर्चा हो रही है, फिर विज्ञान की चर्चा हो रही है। विज्ञान किसे कहते हैं? वट इज विज्ञान? शास्त्र के अंदर जब हम ज्ञान और विज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, दोनों में क्या भेद है, ये जानना आवश्यक है। ज्ञान का अर्थ है नॉलेज। आपको किसी के बारे में बताया जा रहा है, यहां भगवान जो है भगवत ज्ञान के अंदर आपको भगवान, आत्मा, प्रकृति का ज्ञान दे रहे हैं। अब उस ज्ञान को आपने प्रयोगात्मक अर्थात अपने जीवन में उसको प्रैक्टिकली कैसे समझना है और कैसे लगाना है, क्या फिलोसॉफिकली आपने उसको समझा है और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, ये विज्ञान है। तो पहले से लेकर 7वें श्लोक के अंदर भगवान कहते हैं, भगवान ने अपने समग्र रूप को बताने की प्रतिज्ञा करी है। अभी आपको भी थोड़ा सा पिछले जो आपने 7 श्लोक किए हैं, 9 श्लोक किए हैं, उसकी चर्चा करूंगा। अपरा प्रकृति के बारे में बताया, परा प्रकृति के बारे में बताया और अपरा परा प्रकृति के संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है उस उत्पत्ति को बताया और उसके बाद ये बताया कि इन सब का मूल कारण ओरिजिन मैं हूं। ये बात समझा दी। 8वें से लेकर 12वां श्लोक जो हम करेंगे इसके अंदर जो है जितने भी पदार्थ हमको दिखाई देते हैं, जितनी भी वस्तुएं हमको दिखाई देती है, उसके अंदर कारण भगवान है। मतलब मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैं ये हूं, इसमें मैं ये हूं, इसमें मैं ये हूं। तो कारण स्वरूप जो है भगवान की जो एक डिस्ट्रीब्यूशन है, व्यापकता है, सर्वत्रता है, उस बात जो है भगवान यहां समझा रहे हैं। इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं कि भगवान ने यहां पर अपनी विभूतियों की चर्चा करी है कि मेरी ये विभूतियां है। ऐसी ही विभूतियों की चर्चा भगवान 9वें अध्याय में कर रहे हैं और ऐसी ही विभूतियों की चर्चा भगवान 10वें अध्याय में कर रहे हैं। अब 13वें से लेकर 19वें श्लोक तक भगवान बताते हैं कि जो भगवान की शरण में आने वाले लोग हैं वो कौन है और जो भगवान की शरण में नहीं आते हैं वो कौन है। भगवान की उपासना करते हैं, भगवान की शरण में आते हैं, उनके शरण में ना आने वालों का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है और जो भगवान की शरण में आते हैं उनका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया है। 20वें से लेकर 23वें श्लोक तक भगवान बताते हैं कि अगर आप मेरी शरण में नहीं आते हो और किसी और की शरण में जाते हो, अर्थात मेरे को छोड़कर अगर आप देवी देवताओं की शरण में जाते हो तो उनकी उपासना करने का, उनकी सेवा करने का, उनकी पूजा करने का फल क्या है, उस कंप्लीट फल का वर्णन जो है भगवान यहां करते हैं। उसके बाद 24वें से लेकर 30वें श्लोक पर भगवान कहते हैं कि जो भगवान के प्रभाव को, भगवान के इफेक्ट को, भगवान की वैल्यू को नहीं जानते हैं, उनकी निंदा करते हैं या जो जानते हैं भगवान की प्रशंसा करते हैं, उन सबका वर्णन किया है और साथ ही भगवान का जो समग्र एक संपूर्ण सगुण साकार रूप है उसके बारे में वर्णन होता है। छठे अध्याय के अंदर जो आखिरी श्लोक है वहां भगवान कहते हैं, और समस्त योगियों ने जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है और अंतकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है, वो सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। छठे अध्याय के अंदर ध्यान योग है। भगवान ने अर्जुन को बताया कि ध्यान योग के द्वारा मन को कैसे वश में किया जाता है। छठे अध्याय के अंत में आके अर्जुन ने पूछा कि जो इस योग करने में असफल हो जाता है उसकी क्या गति होती है। परंतु भगवान जो है अंतिम श्लोक में आके ये बता रहे हैं कि जितने भी योग मैंने बताए हैं उनमें से सबसे उच्च कौन सा है। तो भगवान ने यहां बताया कि समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, मतलब इंद्रियों के परायण नहीं है, सांसारिक भोगों के परायण नहीं है, केवल मेरे परायण है, ऐसा योगी जो अपने अंतःकरण में अपने मन के अंदर हर समय मेरे ही बारे में सोचता है और किसी के बारे में नहीं सोचता, अर्थात उसके सोचने का तरीका, उसकी भक्ति जो है अव्याभिचारिणी होती है, व्याभिचार नहीं करता। क्या व्याभिचार और क्या व्याभिचार, दोनों में भेद क्या है, व्याभिचार किसे कहते हैं और अव्याभिचार किसे कहते हैं। साधारण भाषा में बात करेंगे तो जब भी कोई स्त्री अपने पुरुष को, अपने पति को छोड़कर किसी दूसरे के साथ संबंध बनाती है तो उसे व्याभिचारिणी कहा जाता है, और जब भी कोई पुरुष अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरे किसी स्त्री के साथ संबंध बनाता है तो उसे व्याभिचारी कहा जाता है। तो इन दो वाक्यों से निष्कर्ष ये निकलता है कि अपने को, जो आपका अपना है उसको छोड़ के दूसरे से संबंध बनाना व्याभिचार कहलाता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, जो आपका अपना है उससे संबंध छोड़ के आप दूसरे के साथ संबंध बनाते हो तो आप व्याभिचारी कहलाते हो। तो भगवान क्या कहते हैं कि अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है, अर्थात मेरे अलावा और किसी के साथ संबंध नहीं कायम करता। वो और कोई कौन है, और कोई जिससे संबंध नहीं रखता है वो और कोई कौन है। तो भगवान जी यहां बताते हैं कि और कोई के अंदर भगवान के अलावा जितनी वस्तुएं हैं, भगवान के अलावा जितने लोग हैं उनसे अगर आप संबंध स्थापित करते हो तो आप व्याभिचार कर रहे हो। आपकी भक्ति, आपका भगवान के प्रति प्रेम वो व्याभिचारी है, अव्याभिचारी नहीं। आपका अपने शरीर से प्रेम है, शरीर आपका अपना नहीं है, कल चला जाएगा। आत्मा ने शरीर को धारण किया है कुछ अर्थों के लिए, अपने कर्मों के फलों को भोगने के लिए। जब मृत्यु हो जाएगी तो शरीर से संबंध स्थापित खत्म हो जाएगा, स्थापित हो जाएगा, आपको फिर नया शरीर धारण करना पड़ेगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप अपने शरीर के साथ भी संबंध रखते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, मतलब सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करते हैं, इंद्रकृत्य करते हैं, तो आप व्याभिचारी हैं। संसारिक वस्तुएं, नातेदार, रिश्तेदार, देवी देवता, मतलब अन्य कोई भी वस्तु भगवान को छोड़ के उसके साथ संबंध स्थापित करते हैं तो व्याभिचारी है। भगवान यही कहते हैं जो अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है वही सबसे उच्च है और कोई नहीं। इसके बाद बताते हैं कि मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है। दिव्य भक्ति हो सकता था, दिव्य प्रेमा भक्ति के शब्द इस्तेमाल किया, ट्रांसडेंटल डिवोशनल सर्विस विद लव, कि आपने भगवान के साथ जो संबंध बनाना है, जो आपने सेवा करनी है, उस सेवा के अंदर प्रेम होना चाहिए, मजबूरी नहीं होनी चाहिए। इट हैज टू बी डिवोशनल सर्विस विद लव। भोग बनाना है, भगवान को खिलाना है, अरे प्रभु जी ने कहा था भगवान को खिला के खिलाना, बड़ी मुसीबत कर दी है, टाइम नहीं है, टाइम बड़ा शॉर्ट है, मैं जल्दी उठ नहीं पाया, मैं जल्दी उठ नहीं पाई, अब भगवान को बना तो हमने लिया है, अब भगवान को खिलाना पड़ रहा है, समय है नहीं, 10-15 मिनट भोगने लग जाएंगे, क्या मुसीबत डाल दी मेरे सर, फिर भी खिलाया। तो प्रेम से खिलाया कि मजबूरी में खिलाया, कैसे खिलाया? तो प्रेमा भक्ति नहीं हुई, भक्ति हुई पर प्रेमा भक्ति नहीं हुई। डिवोशनल सर्विस विद लव, तो भगवान स्पेसिफाई करते हैं कि जो मेरे से डिवोशनल सर्विस में जुड़ा हुआ है प्रेम के अंदर, जो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में रहता है, जो योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में रहता है, वह सबसे सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। अब प्रश्न ये है कि ये सारे काम समझने के लिए फिलोसॉफिकल जो एनालिसिस है उसके लिए भगवान अब 7वें अध्याय के अंदर स्टार्ट करते हैं। और मजे की बात क्या है कि 6वें अध्याय के बाद जब 7वां अध्याय स्टार्ट होता है तो अर्जुन का कोई प्रश्न नहीं है। भगवान अपनी एक रॉ में, एक लय में, एक मूड के अंदर बोलते चले जा रहे हैं कंटिन्यूअसली कि मेरा सर्वोच्च मत ये है। उसके बाद क्या कहते हैं, हे पिता पुत्र अब सुनो, तुम किस तरह मेरी भावना में पूर्ण रहकर मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संदेह रहित जान सकते हो। सबसे पहले तुमको किसकी भक्ति करनी है उसको जानना है, किसकी सेवा में लगना है, क्यों लगना है, आपको इसके बारे में ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि मेरे में अपने आप को आसक्त कर देना, अपने मन को मैया सक्त बना, अपने मन को मुझमें आसक्त कर देने हैं। तो आसक्ति का लेवल क्या है, कि आसक्ति किसे कहते हैं, बट इज दी प्लेटफॉर्म जिसमें आप कहेंगे कि यस मैं आसक्त हो गया। एक उदाहरण देता हूं, एक मुल्ला जी नमाज पढ़ रहे हैं, रेगिस्तान है, और नजरू जो है नैना को याद करते हुए नैना के दिमाग नैना के मन में लगाए, नैना को अपने मन में लगाए हुए उसका स्मरण करते हुए उसका ख्याल करते हुए उनके आने से 2-3 बार क्रॉस कर जाता। तो जब नमाज पूरी हो जाती है तो वो मुन्ना जी जो है बुलाते हैं कैश को, पत्नी का दूसरा नाम कैश था, उसे कहते हैं कि तुमने जो है गुनाह किया है, तुमने देखा नहीं कि मैं खुदा की इबादत में मस्त था, मैं उनके लिए उनका उनसे नमाज पढ़ रहा था, तुमने मेरे को जो है 3-4 बार डिस्टर्ब कर दिया है, ऐसा करना गुनाह है, जो गलत बात है, तुमको ध्यान रखना चाहिए था, नमाजी के पीछे से जाकर नमाजी के आगे से नहीं जाना चाहिए था। तो क्षमा मांग लेता है, आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। चलो ठीक है, क्षमा मांग रहा है, बाल बिखरे हुए हैं, दाढ़ी बड़ी हुई है, मिट्टी बड़ी हुई है, कपड़े फटे हुए हैं, बुरा हाल है, चलो ओके फॉरगिवन। अब वो कैश जो है मजबूर उनसे सवाल करता है, कहता है मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहता हूं, क्या आप मुझे उसका उत्तर देंगे? बोले हां करो। बोले कि मैं एक लड़की के प्रेम में आसक्त था, आसक्ति थी मुझे उस लड़की के प्रति, लैला के प्रति, उस आसक्ति में मैं इतना खो गया था कि मुझे आप दिखाई नहीं दिए, मैंने जानबूझ के आपको क्रॉस नहीं किया, मैं उस लैला के प्रेम में इतना खो गया था कि मुझे आप दिखाई नहीं दिए। तो मेरा सवाल यह है कि आप तो खुदा के प्रेम में मस्त थे, खुदा के प्रेम में आसक्त थे, आपको मैं कैसे दिखाई दिया? तो जब भगवान को देखना है, भगवान को याद करना है, भगवान का स्मरण करना है, भगवान से संबंध बनाना है, और कुछ दिखना नहीं चाहिए, वो आसक्ति का लेवल चाहिए। भगवान कहते हैं मैया आसक्त होना पड़ता, मेरे में अपने मन को पूर्ण रूप से आसक्त कर दो। कितना आसक्त कर दो? जब उद्धव जी ने राधा जी से कहा, जो कृष्ण ने कहा है मन को ब्रह्म में लगाओ, तो राधा जी ने कहा उद्धव मन न होते 10-20 मन तो एक ही था, वो शाम सुंदर लेगा, मन किसने लगाए, वो लेवल लेके आना। तो ये ज्ञान भगवान दे रहे हैं कि कैसे होगा, कहते हैं कि मेरी भावना में पूर्ण रहते, युंशन मंदाश्रय, मेरे आश्रय में, तुम्हारे पास किसी और का आश्रय नहीं होना चाहिए, द्रौपदी ने पतियों का आश्रय लिया, गुरुजनों का आश्रय लिया, पितामह का आश्रय लिया, राजा का आश्रय लिया, भगवान प्रकट नहीं हुए। जब केवल भगवान का आश्रय लिया, दोनों हाथों से धोती पकड़ी थी, दांतों से धोती दबा रखी थी, आस्ता आस्ता सब छोड़ दिया, दोनों हाथों से भगवान की शरणागति हो गई, भगवान तुरंत प्रकट हो गए। द्रौपदी ने कहा था कि मैंने आपको पुकारा और आप आए नहीं, तो भगवान ने कहा कि तेरे को तो भूतों का आश्रय था, तुम्हें मेरे आश्रय में नहीं थी, तू मेरे आश्रय में होती मैं तुरंत आता, उतना मेरे आश्रय में थी मैं आया। जब अक्षय पात्र के अंदर भोजन समाप्त हो गया था और दुर्वासा भी नहीं आए थे दुर्योधन के भेजे हुए, तब मैं तुमने मेरा आश्रय लिया, मेरे को बुलाया, मैं तुरंत आ गया। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे आश्रय में आ जाना। द्रौपदी ने कहा, बहुत गुस्सा हो गई, मेरी बहन कहते हो, कृष्ण कहते हो, मेरी बात नहीं सुनी तुमने, बहुत देरी कर दी। तो भगवान फिर कहते, अच्छा थोड़ा मेरी बहन का करता हूं उसे, कि तुमने क्या किया था? बोले मैंने आपको पुकारा था, किस नाम से पुकारा था? हे गोपी, जे गोपी माधु द्वारका, जे द्वारका वासिन, वो तो तुम गलती कर गए। मैंने क्या गलती करी? अरे मैं तो तेरे आसपास ही था, मैं सर्व जाता हूँ, सर्वत्र हर जगह रहता हूँ, तो नहीं देख पाई बात अलग, मैं तेरे आसपास था, तो तुमने पुकारा किसको? द्वारकाधीश को। तो पहले मैं द्वारका गया, फिर मैं आपके आया, इसलिए देरी हो गई, पहले मुझे द्वारका जाना पड़ा। भगवान कहते हैं मेरे आश्रय आ जाओगे तो मैं तो अनंत चेता सप्तम हो नाम स्मृति नित्य सहने आपके लिए हर समय उपलब्ध हो सुलभ हो। तुमने पुकारा और हम चले आए, शर्त क्या है? कि तुम्हारे चिंतन में तुम और नहीं होना चाहिए, केवल मेरे आश्रय होना चाहिए। तो यह जो है बात, यह बताने के बाद जब आप सातवें अध्याय के अंदर पढ़ते हो तो चौथे से लेकर जो छठा श्लोक है उसके अंदर आपको ज्ञान की बात मिलती है, यू गेट नॉलेज। दूसरे श्लोक का पर्पस बनिएगा, बहुत सुंदर शब्द जो है प्रभुपाद ने इस्तेमाल किए। भगवान कह रहे हैं जब मैं अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा, इसे जानकर तुम्हें जानने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मतलब जो भगवान भगवत ज्ञान दे रहे हैं सातवें अध्याय के अंदर, उसको अगर जान लोगे समझ लोगे तो इसके बाद कुछ भी और जानने के लिए नहीं बचेगा। पूर्ण ज्ञान में प्रत्यक्ष जगत, इसके पीछे काम करने वाला आत्मा तथा इन दोनों के उद्गम सम्मिलित है, अर्थात परमात्मा, ये दिव्य ज्ञान है। तो यहां जो है भगवान आपको कंप्लीट नॉलेज देते हैं, कंप्लीट नॉलेज। चौथे श्लोक में जाकर भगवान बता रहे हैं आपको कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि अहंकार आठ प्रकार से विभक्त मेरे भिन्न अपरा प्रकृतियां हैं, इंफीरियर एनर्जीज। और इनका टोटल करेंगे यह शॉर्ट में बताया है भगवान ने, यहां पर उसको शॉर्ट कर दिया। जब आप अपरा प्रकृति की बात करते हैं, प्रकृति जिससे शरीर बना हुआ है भगवान का अंश, तो उसके अंदर जो है 23 एलिमेंट्स आते हैं, जो कि आप 13वें अध्याय में जाके 6वें 7वें श्लोक में करेंगे। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जिनकी चर्चा यहां हो रही है, स्थूल तत्व है, मन बुद्धि अहंकार तीन जो है सूक्ष्म तत्व है। पांच ज्ञान की इंद्रियां, जिसे कान आता है, आंख आती है, नाक आती है, जीवा के अंदर रस लेने की शक्ति आती है, त्वचा आती है, पांच इनके विषय। कान का विषय है शब्द, आंख का विषय है रूप, नाक का विषय है गम, और जीवा का विषय है रस, और त्वचा का विषय है स्पर्श। और पांच कर्म की इंद्रियां, दोनों पैरों को ही गिना गया है, दोनों हाथों को ही गिना गया है, जीवा में बोलने की शक्ति जिसे वाक शक्ति कहते हैं तीसरी, और उपस्थ और गुना मन मित्र जागने के स्थान दो इंद्रियां हो गई पांच। ये टोटल मिला के बनता है आपका आठ और पांच और पांच 23। 24th जो एलिमेंट आता है वो आता है प्रधान। प्रधान का मतलब है अव्यक्त प्रकृति, मूल प्रकृति, जिससे आता है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। कंप्लीट नॉलेज 13वें अध्याय में दी गई, या भगवान ने शॉर्ट में दिया है कि आठ प्रकार की मेरी भिन्न प्रकृतियां हैं जिनको अपरा कहा जाता है। अब कहते हैं हे महाभाई अर्जुन, इसके अतिरिक्त एक मेरी अन्य पराशक्ति है जो उन जीवों से युक्त है जो भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का भी दोहन कर रहे हैं, आत्मा। वो भी मेरा ही अंश है, वो भी मेरा ही पार्ट एंड पार्सल है। पर आत्मा जो है, जो मेरी भौतिक प्रकृति है उसके साथ युक्त होती है, अर्थात शरीर धारण करना है तो भौतिक प्रकृति से करना है, आत्मा उस शरीर को धारण करती है अपने कर्म के फलों को भोगने के लिए। इतना ज्ञान देने के बाद जो है भगवान बताते हैं सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे ही जानो। कॉज कारण मैं हूं और कोई नहीं, यही बात भगवान जो है दसवें अध्याय के आखिर श्लोक में बताते हैं। अहम सर्वस्य प्रभवो, सब कुछ जो है मेरे से ही उद्गम हो रहा है और किसी से नहीं। इतना भगवान ने ज्ञान दिया, दिस इज नॉलेज। अब भगवान जो है सातवें श्लोक के अंदर विज्ञान की बात कर रहे हैं, विज्ञान बता रहे हैं, प्रैक्टिकल क्या समझने वाली बात है, व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड, क्या समझना है आपको। यहां भगवान कहते हैं हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में घुसे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। परा प्रकृति मेरे से है, अर्थात आत्मा मेरे से उत्पन्न हुई है। प्रकृति जो है भौतिक शरीर मिला है वो मेरे से उत्पन्न हुआ है। इसको समझना कैसे है उसके लिए भगवान ने एग्जाम्पल दिया। आप एक धागा लीजिए, धागे को 5-6-8-10 राउंड करके उसको जो है आप बट लीजिएगा, उसको धागे के अंदर जगह जगह पर धागे से ही मोती की गांठ बनाते जाइएगा। 5-6 गांठें मारी तो एक मोती बन गया, फिर 5-6 गांठें मारी दूसरा मोती बन गया, 5-6 गांठें मारी तीसरा मोती बन गया। अब उस माला के अंदर, उस मणि के अंदर, उस मणि माला जो है उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो धागा और मोती दोनों किसके बने हुए हैं, धागे के बने हुए हैं। मतलब भगवान कहते हैं कि सब कुछ मेरे पे ही आश्रित है, चाहे भौतिक प्रकृति है और चाहे वो आत्मा है, दोनों मेरे ही अंश है, दोनों मेरे ही आश्रय है, दोनों मेरे ही पार्ट एंड पार्सल है, उसमें भेद कोई नहीं है। इसका मतलब है सर्व कारण कारणम, सब कारणों का परम कारण मैं ही हूं। मैं कहा बात समझ में नहीं आ रही है, सब कुछ साथ ही व्यंगम सर्वमिति, सब कुछ भगवान कैसे है। उसके लिए फिर एक उदाहरण दिया है, आप एक बर्फ का घड़ा बनाइए, उसके अंदर पानी भरिए और उस बर्फ के घड़े को तालाब में छोड़ दीजिए। अब आपसे कोई पूछेगा कि क्या है जी, तालाब में पानी है, घड़ा पानी का बना हुआ है, घड़े के अंदर भी पानी है। तो इसी तरह जितना भी कुछ हम देख रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कुछ भगवान कहते हैं मैं हूं, मेरे अलावा और कोई नहीं है। ये विज्ञान की बात है, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस यू नीड टू मेक यू अंडरस्टैंड। भगवान ने इस आत्मा श्लोक कहा कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में मुझे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मेरे आत्मा। मणि क्या है, मोती मणि है आपकी अपरा प्रकृति, और किसमें लगी हुई है, परा प्रकृति धागे में, बेस धागा है। आत्मा ने शरीर धारण किया है तो परा प्रकृति जो है जिसको आत्मा के नाम से पुकारा जाता है वो धागे का रूप है, और जो अपरा प्रकृति है जिसको भी शरीर कहते हैं वो आपका मनो का रूप है। अब भगवान इसके बाद कहते हैं कि जो आपने पिछली बार शुरू किया होगा आठवां, वे कुंती पुत्र में जल का स्वाद हो, सूर्य का चंद्रमा का प्रकाश हो, वैदिक मंत्रों में ओंकार हो, आकाश में ध्वनि हो और मनुष्य में सामर्थ्य हो। ये विभूति बताई जा रही है, अपनी ऑपुलेंसिस, अपना ऐश्वर्य, अपनी विभूतियां। जल के अंदर एक नैसर्गिक स्वाद होता है, कहीं से खारा निकलता है, कहीं से मीठा निकलता है, कहीं से ना खारा होता है ना मीठा होता है। अब आप देखते हैं समर्सिबल पंप चलाते हैं तो अलग अलग मौसम का पानी होता है, इतने पीपी इतने पीपीएम पैरामल है, मतलब आपको टेस्ट अलग मिलता है। परंतु उन सबके बावजूद जल के अंदर एक नेचुरल प्रोपेंसिटी है टेस्ट की। तो भगवान कहते हैं जो नेचुरल टेस्ट है वो मैं हूं, जल के अंदर स्वाद मैं हूं। ओरिजिनल टेस्ट जो है जल का वो मैं हूं, वो स्वाद मैं हूं। जब जल के स्वाद की बात आती है तब देखिएगा कि स्वाद कौन लेता है, जीवा, जीवा ले रही है ना, और जीवा का रस अर्थात स्वाद है। जब हम विषयों की बात करते हैं, हमने पहले बताया कि जो जीवा है उसका जो इंद्रिय विषय, जीवा नाम की जो इंद्रिय है उसका विषय क्या है, स्वाद रस। तो भगवान कहते हैं कि जो तन्मात्रा है उस तन्मात्रा से ही इंद्रिय बनी है, और जब समाप्त होती तो इंद्रिय इसी तन्मात्रा में लीन हो जाती है। पर उस तन्मात्रा का जो ओरिजिनल टेस्ट है, जो रस है, वो मेरी वजह से है, मैं हूं। इट इज मी, नो वन एल्स। अब यह बात आती है प्रभा अश्विन शशि सूर्य। और एक आगे चलेंगे आप, जो हमने आज श्लोक पढ़ा है उसमें आता है तेजाश अश्विन भावस हो। तेज में और प्रभा में क्या फर्क है, व्हाट इज द डिफरेंस? आपका चेहरा बड़ा तेजोमय है, आपके चेहरे से बड़ी प्रभा छलक रही है। यह प्रभा के साथ जो है एग्जाम्पल दिया है सूर्य और चंद्रमा का, प्रभा अर्थात रूप, तेजस्वी रूप अर्थात दोनों जो है आंख के तन्मात्राएं हैं। इंद्रिय है, ज्ञान इंद्रिय आंख उसकी उसका विषय है, परंतु भेद क्या है? दो शब्द अलग अलग इस्तेमाल किए हैं तो मीनिंग भी अलग अलग ही होना चाहिए, मीनिंग सेम नहीं हो सकता, इट हैज टू बी डिफरेंट। इसे कहा जाता है कि जो अग्नि है, अग्नि के अंदर दो क्वालिटी होती है। कहीं भी आप अग्नि रख देंगे जलेगी तो एक तो उष्मा देती है और एक प्रकाश देती है, दो क्वालिटी है उसके पास, रोशनी देगी और गर्मी देगी, उष्मा देगी। जब भगवान कह रहे हैं कि मेरी जो क्वालिटी सूर्य और चंद्रमा के अंदर है वो आपको प्रकाश भी दे रहा है और गर्मी भी दे रहा है, चंद्रमा से ठंडक मिल रही है, सूर्य से गर्मी मिल रही है, प्लस साथ साथ प्रकाश भी मिल रहा है। उसके अंदर आपको जो है उस शब्द इस्तेमाल किया गया है प्रभा। प्रभा का मतलब है दोनों गुण आ रहे हैं, प्रकाश का भी गुण आ रहा है और उष्मा अर्थात गर्मी या ठंडक का भी गुण आ रहा है, टेम्परेचर का भी गुण आ रहा है और प्रकाश का भी गुण आ रहा है। पर तेज, आपका चेहरा बड़ा तेजोमय है, उसे गर्मी नहीं आ रही, बाहर क्या आ रहा है? केवल प्रकाश। तो जहां पर जो है अग्नि का गुण केवल प्रकाश परिलक्षित हो रहा है उसको तेज कहा जाता है, और जहां अग्नि के दोनों गुण परिलक्षित हो रहे हैं उसको प्रभा कहा जाता है। ये शुद्ध मेरी क्लियरली अंडरस्टूड। तो यहां जो है प्रभा का मतलब है सूर्य और चंद्रमा, और प्रभा जो है तेज जो है वो आपकी रूप का विषय है, रूप तन्मात्रा जो है उससे परिलक्षित होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि रूप जो आप देखते हो या सूर्य और चंद्रमा के अंदर जो आपको अग्नि अंदर जो आपको प्रकाश दिखाई देता है, ऊष्मा दिखाई देती है, उसका ओरिजिन, उसका सार तत्व मैं हूं, उसका सार मैं हूं। उसके बाद भगवान ने कहा वैदिक मंत्रों में ओंकार हो, ओंकार प्रण, जिसे कि आप प्रण शब्द कहते हैं, प्रण सर्वेषु शब्द थे परिशु, प्रण जो है प्रण ओम के लिए इस्तेमाल होता है, ओम। जब ओम की बात करते हैं तो शब्द की बात होती है, और शब्द जो है किसका विषय है? आकाश का। कार में शब्द बनता है पर जो शब्द का जो तन्मात्रा है, जो ओरिजिन है, वो आकाश से आता है। तो आकाश के अंदर जो है जो भी शब्द हम सुनते हैं, जो भी हम शब्द अंडरस्टैंड करते हैं, उसका जो सार है, उसका जो तत्व है, वो स्वयं भगवान है। अब ओम शब्द से किसका प्राकट्य होता है, कोई बताएगा? भगवान की वेणु ध्वनि से सबसे पहले प्रणव शब्द निकला, फिर ब्रह्म संहिता के पांचवें अध्याय के अंदर स्पष्ट उल्लेख मिलता है 27वें श्लोक में कि भगवान की वेणु ध्वनि से वेदों की माता गायत्री का प्रादुर्भाव होता है। तो जो प्रणव शब्द है ओंकार, ओम जिसे कहते हैं, उससे निकलती है गायत्री, उस गायत्री से प्रकट होते हैं वेद, एक वेद यजुर्वेद। यजुर्वेद का फिर डिवीजन होता है, आपको चारों वेद निकलते हैं, सामवेद निकलता है, ऋग्वेद निकलता है, अथर्ववेद निकलता है। अब उस वेदों को फिर आगे जब सुनते हैं, पुराण निकलते हैं, उपनिषद निकलते हैं, बहुत सारी डिवीजन है उसके, बहुत सारे ट्रेडिशन है। परंतु भगवान कहते हैं कि इन सब वैदिक शास्त्रों के अंदर जो ओरिजिन है, जो सार तत्व है, सार सार का मतलब होता है निचोड़, जो बेसिक मूल तत्व है वो मैं हूं। इस मूल नो वन एल्स। आकाश में ध्वनि, हमने चर्चा करी आकाश में शब्द है, तो भगवान कह रहे हो कि मैं हूं, और मनुष्यों में सामर्थ्य पौरुषम मनुष्य। व्यक्ति कहता है मैं बड़ा बलवान हूं, मेरे में बड़ा बल है, तो उस बल की जो सोर्स है, उस बल का जो सार है वो स्वयं भगवान है। इसके बाद कहते हैं पुण्य गंधो पृथ्वी यांत तेजाश्रो विभाव से जीवनम सर्व भूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। कि वे पृथ्वी की आद्य सुगंध, आद्य का अर्थ क्या है, पुण्य, पुण्य शब्द पहले इस्तेमाल किया है, फिर बाद इसकी ट्रांसलेशन लिखते हैं मूल, सेकंड वर्ड दिया है आद्य, आद्य का मतलब है ओरिजिनल। इसके अंदर जो आद्य सुगंध है पृथ्वी के अंदर, देखिए बारिश पड़ती है एक सुगंध निकलती है, पृथ्वी के अंदर तरह तरह के केमिकल्स पड़े हुए हैं, किसी का यूरिन भी पड़ा हुआ है, किसी का स्टूल भी पड़ा हुआ है, पस भी पड़ी हुई है, बहुत सारी चीजें पड़ी है, हर चीज अपनी अपनी सुगंध दे रही है, पर इस सब के बावजूद पृथ्वी के अंदर एक ओरिजिनल सुगंध है, ओरिजिनल। ओरिजिनल सुगंध मतलब गंध जो है, फिर आपकी नासिका का विषय आ गया और उसकी तन्मात्रा, गंध जो है तन्मात्रा है, उसका इंद्र विषय है। तो वो जो आद्य सुगंध है वो भी भगवान कह रहे हैं कि मैं हूं, मेरी वजह से है, दैट इज मी, नो वन एल्स। इसके बाद कह रहे हैं अग्नि की उष्मा, मैंने आपको बता दिया तेजस्वी, जो तेज हो रहा है वो उसके अंदर आपको प्रकाश दिखाई देता है, आपको उसके अंदर जो एक 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 जैसे कह रहे प्रभा और तेज, मैंने आपको फर्क बता दिया। उसके बाद आती है समस्त जीवों का जीवन और तपस्वियों का तप। आपका जीवन चलता है जब प्राग्नि से भोजन खाते हैं तो आपके पेट के अंदर एक अग्नि है, जब प्राग्नि बोलते हैं उसको, जब प्राग्नि से आपका जीवन चल रहा है। तो भगवान कहते हैं कि आपको जीवन चलाने के लिए जो जो प्राग्नि है, जो आपके पेट के अंदर अग्नि है, वो भी मैं ही हूं, नंबर एक। नंबर दो, कि जीवन चलाने के लिए जो चेतना है, जो कॉन्शियसनेस है, वो भी मैं हूं। जीवन जो आपका आत्मा की वजह से है, वो आत्मा भी मैं हूं। तो मतलब जो है आपका जो जीवों का जीवन है, जितने भी जीव है उनका जो जीवन है वो मेरी वजह से है, तो सोर्स उसका मैं हूं, उसका सार तत्व मैं हूं। और लास्ट में कहते हैं यहां पर मैं तपस्वियों का तप हूं, कि जो भी तपस्वी जो है, तपस्या को तपस्या किसे कहते हैं, मतलब तपस्या तप किसे कहते हैं, सोने को बहुत हाई टेम्परेचर में तपाया जाता है तो कुंदन बनता है, तपाया जाता है, मतलब सोने को बहुत ही ऑकवर्ड अनफेवरेबल सिचुएशन से बाहर निकाला जाता है, जब इससे बाहर निकलता है तपता है तब सोना कुंदन बनता है, तब प्योरिफाई होता है। तो तपस्वी का मतलब यह है कि जिसने तप किया है, मतलब जिसने अपने आप को प्योरिफाई किया है, उसने क्योंकि अपने आप को प्योरिफाई किया है इसलिए प्योरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर उसने बहुत सारे जो उसके शरीर और मन के प्रतिकूल परिस्थितियां थी उनको क्रॉस किया होगा। हम आपसे कहते चाय नहीं पीना है, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है, अरे बाबा रे कहीं किसी घर जाएंगे तो चाय पीनी पड़ेगी, वो हमारे घर आएगा तो चाय पीनी पड़ेगी, चाय कैसे छूट सकती है, दुनिया छोड़ सकते हैं पर चाय नहीं छोड़ सकते, हाँ हाँ बड़ा मुश्किल काम है जी। पर जो व्यक्ति अनर्थ निवृत्ति कर लेता है, जो व्यक्ति चाय कॉफी सिगरेट शराब मांस अंडा मुर्गा मछली, इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं, मन को वश में कर लेता है, तपस्या है ये, तो वो तपस्या का जो ब्रेक है, तपस्या का जो मूल है, जो आप कर रहे हो भगवान कहते हैं मेरी वजह से है, दैट इज मी, तो मेरे कारण है। तो भगवान यहां पर जो है अपनी ऑपिनेंसी बता रहे हैं। अगले श्लोक में बताते हैं प्रभा पुत्र ये जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हो, बुद्धि वाले ये बुद्धि हो, सर्वशक्ति वाले पुरुषों का तेज हो। या फिर तेज तेजस्व की बात हो रही है। जो आपके यहां से तेज छलकता है, बुद्धि वालों का तेज क्या है? बुद्धि वालों के चेहरे से बहुत रोशनी नहीं आ रही है। बुद्धि वालों का तेज मतलब है कि उनका इंटेलिजेंस बोलती है, उनके एक्शन बोलते हैं, उनके कार्य बोलते हैं, उनके डिसीजन बोलते हैं, उनकी आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बोलती है। सत्य असत्य भेद कर पाना, कर्तव्य अकर्तव्य भेद कर पाना, कर्म अकर्मी भेद कर पाना, बुद्धि मान के जो है बड़ा इंटेलिजेंट है। उससे दो मिनट बात करी, बड़ा इंटेलिजेंट व्यक्ति। तो वो जो इंटेलिजेंस छलक रही है, जो इंटेलिजेंस ओपन हो रही है आपके सामने छल के आ रही है, भगवान कह रहे हैं वो तेज, वो इंटेलिजेंस भी न हो और कोई नहीं। क्योंकि इंटेलिजेंस ये मेरा पार्ट एंड पार्सल है, मन बुद्धि अहंकार मेरी वजह से तो है नहीं, तो हो मेरा ही तो अंश है ही। कह रहे हैं कि समस्त जीवों का आदि बीज हो। आदि का अर्थ क्या है? सनातन, बिगनिंग। मतलब जितने भी आपको प्राणी दिखाई दे रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मेरा पुत्र है उसको बीज मैंने दिया, ये मेरी पुत्री है इसका मेरे मेरे बीज से पैदा हुई, मतलब आप उस बीज की चर्चा कर रहे हैं जो अभी आपने डिलीवर किया है। बट बेसिकली आप एक चेक साइनिंग अथॉरिटी है। ओरिजिनल बीज जो है वो स्वयं भगवान, अहम बीज है प्रजापिता। चौदह जाए के यहां चौदह चौथा श्लोक पढ़ेंगे। भगवान कह रहे हैं अहम बीज है प्रजापिता, मैं ही समस्त भौतिक प्राणियों में बीज देने वाला पिता हूं। आप पति पत्नी के संयोग से संतान उत्पन्न होती है, परंतु वो दोनों जैसे चेक साइन करते हैं और बैंक से पैसा निकल आता है, ऐसे आपने चेक साइन किया है और वो संतान आ गई है। अगर भगवान नहीं चाहते हो तो सारी जिंदगी चेक साइन करते रहे, बच्चा नहीं होने वाला। इट्स नॉट पॉसिबल। ऐसे डॉक्टर मैं देखता हूं, नर्सिंग होम में कई मरीज आते हैं, सब चीजें ठीक है, ऑल टेस्ट नॉर्मल, एवरीथिंग इज ओके, हस्बैंड ठीक है, वाइफ ठीक है, संतान बिल्कुल नहीं हो रही है। तो कमी होगी या कुछ तो कृपा होंगे, उसके बिना नहीं हो सकते। तो भगवान कहते हैं कि आदि बीज मैं हूं, समस्त शक्तिमान पुरुषों का तेज हूं, बुद्धिमानों की बुद्धि हो, आदि बीज मैं हूं। इसके बाद कहते हैं सब बलवानों का काम तथा इच्छा से रहित बल हो, ये भरत श्रेष्ठ अर्जुन में वो काम हो जो धर्म के विरुद्ध नहीं। यह चाहता है यह बलवानों का काम, मतलब जितने भी आप बल किसी प्रकार का अपने में बल देंगे, बल का मतलब पहलवानी नहीं है, बल का मतलब है आप में जो भी शक्ति है किसी भी कार्य को करने के लिए, मन को वश में करना है, या आपका बल है कि आपने मन को वश में कर लिया, बुद्धि आपने बहुत अच्छी बुद्धि लगाई, बहुत अच्छी पढ़ाई करी, बहुत अच्छे तरीके से बात समझ ली, तो भी आपकी बुद्धि का बल है, शरीर का बल है, बुद्धि का बल है, मन का बल है, तप का बल है, कोई भी बल आपके पास है वो बल भगवान कह रहे हैं मेरी वजह से है। आप उसके रचयिता, आप उसके जनक, आप उसको पैदा करने वाले, आप कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मी, सर्व कारण कारणम, मैं वो कारण हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। मैं वो कामना, काम यहां पर कामना से लीजिएगा, मैं वो कामना हूं जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। आपके पास दो तरह की डिजायर्स हैं, एक जेन्युइन है और एक फेक है। जेन्युइन डिजायर क्या है और फेक डिजायर क्या है? भगवान कहते हैं फेक डिजायर नहीं, धर्म के विरुद्ध डिजायर वो नहीं है। फेक डिजायर क्या है? इंद्रवृत्ति। फेक डिजायर है भौतिक संसार के सुख देखों को भोगना। फेक डिजायर है अपने लिए बार बार मेलियां बुक करना, बुकिंग समझी एडवांस। इंद्रवृत्ति गई संसारिक भोगों में बट गए, अच्छा भैया एक फलानी योनी मैंने बुक कर ली, चलो ये पिक्चर की एडवांस टिकट होती है ना, आपने एडवांस टिकट ले लिया। दूसरा काम किया, एक और एडवांस टिकट ले लिया। बट वट इज जेन्युइन डिजायर? जेन्युइन काम क्या है? जेन्युइन क्या है? जेन्युइन है कि आपको इस संसार से बाहर कैसे निकलना है, ये डिजायर है आपकी। एक मिनिस्टर सर्वे करने के लिए जेल में गए और जेल में उनकी जो है मुलाकात हुई बहुत सारे कैदियों से, जेलर साथ में था, डिप्टी जेलर था और कंट्रोलर थे उनके साथ, एक राउंड ले रहे हैं, क्या फेक और जेनुइन का फर्क दिखाई देगा। पहले कैदी से मिले, पता है भाई तुम्हें कोई तकलीफ है? आज ही बड़ी तकलीफ है, खिड़की रही है कमरे के अंदर, रोशनी भी आती है, ताजी हवा नहीं मिलती, भाई खिड़की लगवा दो। अच्छा, दूसरे कैदी से मिले, तुझे कोई तकलीफ है? बोला हाँ मुझे भी तकलीफ है, सफाई ठीक से नहीं होती है, तीन तीन दिन स्वीपर नहीं आता है, टॉयलेट गंदा पड़ा रहता है, कमरे गंदे पड़े रहते हैं, बड़ा बुरा हाल है, बड़ी बदबू आती है, मच्छर है, खटमल है, तो कॉकरोच है, भाई सफाई कराओ, डेली दो बार पूछा लगवाओ, फिलाइन लगवाओ, ये लगवाओ, वो लगवाओ, अच्छा काम कराओ। तीसरे से पूछा, हाँ भाई तुम्हें कोई तकलीफ है? बोले एंटरटेनमेंट का साधन ही कोई नहीं है, ना कोई फिल्म देखने को मिलती है, ना कोई टीवी लगा हुआ है, ना कोई खेल है, ना कुछ काम है, बस जबरदस्ती यहाँ पढ़े रहो। अच्छा भी कुछ इंतजाम करो, स्पोर्ट्स कुछ करो यहाँ पे जेल के अंदर। चौथे से पूछा, तुझे कोई तकलीफ है? बोले भी खाना बड़ा बेकार मिलता है, रोटियां जली हुई होती है, दाल जली हुई होती है, दाल में दाना होता नहीं, पानी पानी होता है, भाई खाना तो ठीक कराओ, पेट में जाना है कम से कम तो ठीक होना चाहिए। मतलब हर कैदी के पास एक डिजायर है, उसको एक ना एक चीज चाहिए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। अल्टीमेटली कैदी बेचारा बिल्कुल ऐसे मुंडी करके बैठा हुआ था, उसके बाद गए से पूछो भाई तुम्हें क्या चाहिए? मुझे यहां से बाहर निकाल दो, मुझे यहां से बाहर से जहां चले, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे गली रोटी चलेगी, वो गली रोटी चलेगी, जिंदा बंदे का कांग्रेस मिले वो सब चलेगा, परंतु मुझे यहां से बाहर निकाल दो, ये जेन्युइन डिजायर है। तो हम भगवान कहते हैं धर्म के विरुद्ध काम, मतलब जो कामना आप करते हो, जो धर्म के विरुद्ध करते हो, मैं वो नहीं हूं, मैं हूं कि आपकी कामना जेन्युइन होनी चाहिए, और जेन्युइन कामना है उसका मूल मैं हूं। और इसके बाद जो है जो 12वां श्लोक आता है, तो 12वें श्लोक के अंदर भगवान ने जो है जो अभी तक चार श्लोकों में ज्ञान दिया था उसको विज्ञान बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि तुम ये जान लो कि सारी शक्ति द्वारा सारे गुण, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो, प्रकट होते हैं, एक प्रकार से मैं ही सब कुछ हो। जो बात सातवें श्लोक में बताई मनु और धागा कि सब कुछ मेरे पर ही आश्रित है, सब कुछ मैं हूं, यही बात फिर ये अपनी विभूतियां बताने के बाद फिर एंटर किया कि ये सब कुछ मैं हूं किंतु हूं मैं स्वतंत्र, मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूं, न तो मैं हम केशु न मई, मैं इनमें लिप्त नहीं हूं, ये प्रकृति जो है मेरे अधीन है, मैं माया का अधीश हूं, मायाधीश हूं, मायाधीन नहीं हूं, मैं इसके अंदर जो है लिप्त नहीं हूं, ये सारे के सारे मेरे अधीन है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन मी। और अगले श्लोक में कहते हैं तीनों गुणों सतो रजता तमो के द्वारा मोहग्रस्त संसार मुझको नाती तथा अविनाशी को नहीं जानता। आपने कभी नोट किया है कि दोनों के अंदर आप फूल लेके आते हो मंदिर में, फूल आप भगवान को अर्पित कर दीजिएगा और दोनों को सूंघते हो तो दोनों में खुशबू होती है कि नहीं होती है? वो खुशबू दोनों में आ जाती है। बादल आकाश में रहता है, आकाश में, परंतु आकाश बादल से लिप्त नहीं है, आकाश एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। बादल कल यहां है, कल वहां है, परसों वहां है, परसों वहां है, समय यहां, शाम वहां, मूव करता रहता है, पर आकाश के साथ लिप्त नहीं है। इसी तरह भगवान कहते हैं कि मैं समस्त जीवों के अंदर हूं, परमात्मा रूप में आपके हृदय में विराजमान है, सर्वत्र है, आपके साथ है, आपके पास है, परंतु भगवान कहते हैं कि मैं आपसे लिप्त नहीं हूं। मतलब आप जो कार्य कर रहे हैं उसका फल आपको भोगना है, मैं सिर्फ अनुमंता हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, मैं आपके उस कार्य में लिप्त नहीं हूं। परमिशन मैंने दी, ग्रांट मैंने किया तो डिजायर आपकी थी, इच्छा आपकी थी, मूड आपका था, मन आपका था। आपके उस कार्य के अंदर मैं आपके साथ लिप्त नहीं। तो सातवें अध्याय के अंदर और नवें अध्याय के अंदर ये चर्चाएं निकल के आती हैं कि सातवें अध्याय के अंदर चौथे से लेकर छठा श्लोक जो हमने किया है वो ज्ञान है। ऐसे ही ज्ञान नवें अध्याय के पहले और तीसरे श्लोक के अंदर है। सातवें अध्याय का सातवां श्लोक और नवें अध्याय का चौथा और छठा श्लोक जो है ये विज्ञान है, प्रैक्टिकल है, टू अंडरस्टैंड। सातवें अध्याय में आठवें से ग्यारहवां श्लोक जो है ज्ञान है और बारहवां श्लोक जो है वो विज्ञान है। तेरहवें से अठारहवां श्लोक ज्ञान है। उन्नीसवां श्लोक बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञान नाम प्रपद्यते वासुदेवं सर्वमिति समहात्मा सुतुर्लभा। आपको ही समझना है वासुदेवं सर्वमिति, अर्थात सब कुछ वासुदेव है। जैसे मैंने आपको पानी के घड़े का एग्जाम्पल दिया, हर चीज वासुदेव है, हर चीज भगवान है। और उसके बाद जो है अब नवा अध्याय करते हैं तो सातवें से पंद्रहवां ज्ञान है और सोलहवें से उन्नीसवां विज्ञान है। नवे अध्याय के अंदर बीसवें से अट्ठाईसवां ज्ञान है और उनतीस से चौंतीसवां विज्ञान है। जब आप ध्यान से पढ़ेंगे इनको और इसके बाद देखेंगे ज्ञान के बाद क्या विज्ञान दिया जा रहा है, तो विज्ञान वाला श्लोक जो है आपको बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि वही आपको बताता है श्लोक कि आपको इस जीवन के अंदर अपने आप को कैसे लगाना है, इस जीवन को कैसे व्यतीत करना है, भगवान के साथ हमारा संबंध क्या है, क्योंकि भगवत ज्ञान मिल रहा है। सातवें से लेकर बारहवां अध्याय अभिदेव कहलाता है। ये सातवां अध्याय बिगनिंग है भक्ति योग की। अभिदेव का मतलब है भजन क्रिया, कि आप भगवान के साथ संबंध को कैसे स्थापित करते हैं। पहले से छठा अध्याय जो है संबंध ज्ञान है, सातवें से बारहवां अध्याय जो है ये संबंध को कैसे स्थापित करना है अर्थात भक्ति में कैसे लगना है उसका ज्ञान है। और तेरहवें से लेकर अठारहवां अध्याय जो है आपको प्रयोजन बताता है कि आपको भक्ति में क्यों लगना चाहिए, आपका पर्पस क्या है, वो प्रयोजन आपको बताता है। तो सातवें अध्याय जो है भक्ति योग की बिगनिंग है, जहां पर आपको ज्ञान दिया जा रहा है, यू आर बीइंग गिवन नॉलेज। और जैसे जो है आप सातवां अध्याय समाप्त करते हो, आप देखिएगा कि तीसरे श्लोक में भी भगवान ने बोला और फिर आठवें अध्याय में जाके अर्जुन ने प्रश्न किया है। सातवां अध्याय पूरा जो है भगवान ने एक रौ में एक लय के अंदर लाया है बिना किसी कोमा या फुल स्टॉप के, फिर अर्जुन को पूछने का मौका दे दिया। तो भगवत ज्ञान वाले चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। और एक बार आपको सातवां और नवा ये दो अध्याय समझ में आ गए तो फिर आपको बारहवां अध्याय समझना बड़ा आसान हो जाएगा। तो बारहवां अध्याय जो है भक्ति योग है, किस तरह से भक्ति में लगना है, भक्त के क्या गुण होने चाहिए, उसकी चर्चा होती है बारहवें अध्याय के तेरहवें श्लोक से लेकर और उन्नीसवें श्लोक तक। हरे कृष्णा।